समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, समाचार पत्रिका परिक्रमा में आपका स्वागत है। हर दिन ठीक 4:30 बजे मिलते हैं हम और आप करने परिक्रमा पूरे देश की। जान पाते हैं हमारे आसपास में होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में और नजर डालते हैं खेल की दुनिया पर भी। खेल की दुनिया इन दिनों काफी रंगीन चल रही है और ये भारत के लिए बेहद गर्व की बात है। मगर हम खेल की दुनिया से भी कहीं परे ले चलेंगे आपको उन हस्तियों की याद में जो आज किसी न किसी रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए प्राची प्रिया का और इजाजत दीजिए कार्यक्रम परिक्रमा को आगे बढ़ाने की। आज के इस अंक में मेरे सहयोगी हैं शेफाली सिंह। नमस्ते शेफाली।
नमस्ते प्राची प्रिया एंड हेलो आर डियर लिसनर्स। आई होप दैट द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज गोइंग वेल एंड आफ्टर दैट वीकेंड ब्रेक यू आर एबल टू कैच अप ऑन ऑल दैट इज फ्रेश एंड न्यू। एंड जैसा कि प्राची प्रिया ने कहा, आजकल वी आर ऑल ग्रिप्ड बाय द ओलंपिक्स फीवर एंड देयर इज अ लॉट मोर हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। सो थ्रू आवर प्रोग्राम परिक्रमा लेट्स टेक यू ऑन अ टूर एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। सो बांग्लादेश पीएम शेख हसीना resigns amidst ongoing student protest against job quota system. Sheikh Hasina leaves the country for safer place. President Draupadi Murmu arrives in Fiji on a two-day official visit to hold bilateral meetings with her counterpart William Kertonivere.
सरकार ने कहा पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन 164% बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
Global markets plunge amid US recession fears. Japan's Nikkei posts biggest intraday loss since 1987.
अमरीका ने हमास नेता की हत्या के बाद इसराइल के खिलाफ ईरान और हिजबुल्ला द्वारा संभावित जवाबी कार्रवाई के बारे में G7 देशों को चेतावनी जारी की। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज शाम कांस्य पदक के लिए खेलेंगे।
And now, listeners, it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, we will talk about India's commemorative stamps for the 33rd Paris Games and celebrating Chhari Mubarak. So, Prachi Priya, देश में हम अक्सर देखते आए हैं कि कुछ भी important होता है तो उसे celebrate करने के लिए postal stamps निकाले जाते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल।
तो इस तरीके से हम इतिहास में जो है उस event को दर्ज कर देते हैं।
हाँ।
So, Minister of Communications Jyotiraditya Scindia and Minister of Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandavya today released a set of 4 commemorative postage stamps to celebrate the 33rd Olympic Games currently going on in Paris. This event was held in New Delhi today. 10-meter air pistol mixed team medalist Sarabjot Singh, steeplechase athlete Sudha Singh and former cricketer Akash Chopra also attended the event. These stamps represent sports such as javelin throw, field hockey, sailing and table tennis. While addressing the event, Union Minister Dr. Mansukh Mandavya said, government is nurturing talent from across the country with initiatives such as Khelo India, playing a vital role in providing essential support to the athletes.
आज पोस्टेज स्टैम्प जारी करके हमने हमारे खिलाड़ियों का सम्मान किया है, हमारे देश के स्पोर्ट्स का सम्मान करा है और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों का सम्मान है। चलो हम सब लोग साथ में मिलके चेयर फॉर इंडिया के द्वारा हमारे देश के स्पोर्ट्समैन को प्रोत्साहित करें, स्पोर्ट्समैनशिप को प्रोत्साहित करें। देश में ऐसे कई टैलेंट के रूप में स्पोर्ट्समैन आगे आए, उसको सहयोग करें और व्यक्तिगत उनके जीवन के लिए और देश के लिए प्राउड फील करें, ऐसा इकोसिस्टम का निर्माण करें।
29 प्लेयर्स आउट ऑफ द 117 प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक्स दिस ईयर आर फ्रॉम खेलो इंडिया। मिस्टर मांडव्य सेड दीज स्टैम्प्स रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स स्पोर्ट्स।
ओलंपिक खेल लंबे समय से वैश्विक एकता, एथलेटिक उत्कृष्टता और शांति की खोज के प्रतीक रहे हैं। जैसे ही हम पेरिस में होने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन के 33वें संस्करण के करीब पहुंच रहे हैं, भारत सरकार ने स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला जारी कर इस अवसर को सम्मान करने के लिए सराहनीय कदम उठाया है। ये पहल न केवल ओलंपिक भावना का जश्न मनाती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए भी भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। स्मारक डाक टिकट स्वाधीनतापूर्ण डिजाइन किए गए और स्पष्ट रूप से चित्रित ओलंपिक के सार को दर्शाते हैं। प्रत्येक टिकट कला का एक नमूना है जो प्रतिष्ठित ओलंपिक प्रतीकों, प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों और पेरिस में खेलों की मेजबानी करने के शानदार स्थानों को प्रदर्शित करता है। डिजाइन भारत की समृद्धि, संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं।
एंड फॉर अ नेशन विद अ बर्जनिंग स्पोर्ट्स कल्चर, दी स्टैम्प्स सर्व एज अ सोर्स ऑफ इमेंस प्राइड। दे आर नॉट मेयरली पीसेज ऑफ पेपर बट सिंबल्स ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट। इंडियन एथलीट्स हू हैव बीन प्रिपेयरिंग रिगरसली टू कम्पीट ऑन द ग्रैंडेस्ट स्टेज कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस नेशनल जेस्चर। द स्टैम्प्स रिमाइंड अस ऑफ द डेडिकेशन एंड परसेवरेंस रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स, क्वालिटीज दैट रेजोनेट डीपली विद द इंडियन ईथॉस। एंड प्राचीप्रिया, हमें याद होगा कि बचपन में हम कभी कभी कॉइन कलेक्शन करते थे, कभी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, स्क्रैप बुक्स बनाते थे। तो ये स्टैम्प्स कलेक्ट करके हम सिर्फ अपनी एक हॉबी नहीं बनाते थे बट बच्चों को एक इंस्पिरेशन,
पूरी तरीके से ये एक अनुभव होता था कि हम उस काल को उसका मतलब एक तरीके का सार रख रहे हैं अपने पास एक स्क्रैप बुक में बंद करके, ताकि आज से अगर 20 साल बाद 25 साल बाद उसे जब खोल कर देखें तो देखें कि अरे भाई
जी
कितना सुखद रहा होगा,
कितना सुखद रहा होगा। और शायद हमें खुद भी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती कि काश एक दिन हम भी यहां हो। सो द टाइमिंग ऑफ दिस रिलीज इज ऑल्सो नोटवर्दी एज इंडिया कंटिन्यूज टू मेक इट्स मार्क ऑन द ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टेज विद इंक्रीजिंग सक्सेसेज इन डायवर्स डिसिप्लिन। दी स्टैम्प सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ फार वी हैव कम। दे सिंबलाइज द journey of our athletes, their struggles, their victories and their relentless pursuit of excellence.
इन टिकटों के जारी होने से डाक टिकट संग्रह की कला में भी कितनी जान आ गई है। डिजिटल संचार के प्रभुत्व वाले युग में डाक टिकट अपना आकर्षण और ऐतिहासिक महत्व बरकरार रखते हैं। वे मूर्ति कलाकृतियां हैं जो कहानियों को समय और स्थान के पार ले जाती हैं। इन स्मारक टिकटों को जारी करके भारत सरकार नई पीढ़ी को डाक टिकट संग्रह में रुचि लेने, टिकटों की सुंदरता की सराहना करने और उनके द्वारा प्रस्तुत इतिहास और विरासत को समझने के लिए बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा ये टिकटें शैक्षिक उपकरण के रूप में भी काम आ सकती है। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान का उनका उपयोग छात्रों को ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी और व्यापक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों के बारे में सिखाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार ये पहल युवा शिक्षार्थियों के बीच खेल और इतिहास दोनों में नए सिरे से रुचि जगा सकती है, जिससे राष्ट्रीय गौरव की भावना और दुनिया के बारे में जिज्ञासा पैदा होने की पूरी संभावना है।
बिल्कुल, आई वुड अग्री विथ यू ऑन दैट। And it also gives us an idea of the importance of sports in international diplomacy. The Olympics have always been more than just a sporting event. They are a platform for international diplomacy and cultural exchange. India's participation in the 33rd Paris Olympics and the release of these commemorative stamps signify our commitment to these ideals. It is a gesture of goodwill, showcasing India's dedication to building bridges through sports. The stamps, which will be circulated worldwide, serve as ambassadors of India's spirit of unity and cooperation. Additionally, the stamps provide a unique opportunity to highlight India's own contributions to the world of sports, featuring Indian athletes who have made significant impact on the global stage. Not only honors these individuals but also introduces them to an international audience. This can foster greater recognition and respect for India's sporting talent and achievements.
बिल्कुल, और भारत की सांस्कृतिक और जातीय विविधता इसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है और ये टिकटें उस विविधता का प्रतीक है। विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षेत्रों के एथलीटों को दर्शाते हुए ये टिकट भारतीय खेलों की समावेशी प्रकृति पर जोर देते हैं। वे इस तथ्य का जश्न मनाते हैं कि उत्कृष्टता की कोई सीमा नहीं होती और प्रतिभा और समर्पण देश के किसी भी कोने के सामने से आ सकता है। विविधता में एकता का ये संदेश आज की दुनिया में विशेष रूप से गूंजता है, जहां विभाजन अक्सर समानताओं पर हावी हो जाते हैं।
एंड नाउ लेट्स टेक यू लाइव टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट सावियो इन पेरिस। हेलो सावियो, व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट
इन पेरिस? हेलो देयर, nice to hear you. And I must tell you that just a while back, India's table tennis women's team did very well for themselves against Romania. It was a very exciting match, sort of a roller coaster. India were initially 2-0 up, But Romania fought back gallantly to make it 2-2. But then they didn't know that they had to bump into Manika Batra, who is India's superstar in tennis. And she played excellently in the decider to make it 3-2 in favor of India. She beat Adina Diokanu 11-5, 11-9, 11-9.
Right.
In shooting, there's not too good news because Anand Jeet Singh Naruka and Maheshwari Chauhan failed to keep pace with, you know, the top four and didn't qualify further in the skeet mixed team event. But having said that, in just around an hour from now, I think millions of Indians must be glued and waiting to watch superstar Lakshya Sen in
yes.
the bronze medal match. You
totally.
Know, it's going to be such a event and such a moment for Lakshya because he's bidding to become the first ever male shuttler to win a bronze medal at the Olympics.
Absolutely, we are keeping our fingers crossed. All right,
yes.
thank you.
In the evening.
All right, so that was the latest dose of sports news from the Olympics. Now, moving ahead, we will take you on a, we'll now be discussing about the second significance of the day, which is basically Chhari Mubarak. And,
ji, Chhari Mubarak jo hai, iske baare mein kuch hum batate hain. वो ये है कि छड़ी मुबारक तीर्थ यात्रा धार्मिक समारोह की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित है जो शुद्धिकरण भक्ति और सामुदायिक प्रबंधन यानी बंधन पर जोर देती है माने प्रबंधन और बंधन दोनों पर जोर देती है
बिल्कुल
गदा को सबसे पहले शारिका भवानी मंदिर और दुर्गा नाग मंदिर सहित श्रीनगर के कई प्राचीन मंदिरों में ले जाया जाता है जहां विशेष प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाया जाता है ये अनुष्ठान यात्रा के सुरक्षित और सफल समापन के लिए दिव्य आशीर्वाद को आवाहन देते हैं प्रमुख अनुष्ठानों में से एक भूमि पूजन होता है भूमि पूजन यानी कि पृथ्वी की पूजा हम अपनी धरा की पूजा करते हैं जिस पर हम रहते हैं खाते हैं पीते हैं जो अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर पहलगाम में किया जाता है यह अनुष्ठान पवित्र गुफा की ओर जाने वाले मार्ग के पवित्रीकरण का प्रतीक है यानी शुद्धिकरण का प्रतीक है भक्तों का मानना है कि इस अनुष्ठानों में भाग लेने से उनकी आत्मा शुद्ध होती है और वे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति के और करीब आ जाते हैं
बिल्कुल द जर्नी फ्रॉम श्रीनगर टू द अमरनाथ केव इज अ टेस्टमेंट टू द अनवेवरिंग फेथ एंड रेजिलियंस ऑफ द डेविटीज द पिलग्रिमेज रूट स्पैनिंग अप्रोक्सिमेटली 46 किलोमीटर्स ट्रवर्सेज रगेड टेरेन्स स्टीप क्लाइम्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस डिस्पाइट दीज चैलेंजेस थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स बोथ यंग एंड ओल्ड अंडरटेक द आर्डुअस ट्रेक विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन As the procession moves forward, the rhythmic chants of Bam Bam Bhole and Har Har Mahadev resonate through the mountains, echoing the collective devotion of the pilgrims. The final leg of the journey from Panchatarni to the Amarnath Cave is particularly grueling, yet the sight of the ice lingam fills the devotees with an overwhelming sense of spiritual fulfillment and bliss.
छड़ी मुबारक का उत्सव आस्था और परंपरा की स्थायी भावना का एक प्रमाण है जो लाखों लोगों के दिलों में कायम है ये जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मानवता और देवत्व के बीच के शाश्वत बंधन को याद दिलाता है जैसे ही छड़ी मुबारक जुलूस सुरम्य परिदृश्यों से होकर गुजरता है ये अपने पीछे भक्ति एकता और आशा की छाप छोड़ जाता है यात्रा शारीरिक रूप से कठिन हो सकती है लेकिन आध्यात्मिक पुरस्कार तो इसका असीमित है इस विश्वास की पुष्टि करते हुए कि सच्चा विश्वास सभी बाधाओं को पार करता है और अस्तित्व के उच्च क्षेत्र की ओर हमें ले जाता है ऐसी दुनिया में जहां आधुनिकता अक्सर परंपरा पर हावी हो जाती है छड़ी मुबारक का उत्सव आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धार्मिकता और भक्ति का मार्गदर्शन देता है और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास है क्या विशेष
In Ladakh, over the past 48 hours, various locations in Kargil have experienced significant flash floods and rising water levels in rivers and streams. Villages such as Sharche, Khangral, Khavoz Namsuru, Darchiks, Umbolong, Pashkum, Fokar and other areas have been particularly affected, resulting in extensive damage to crops and property.
The administration has been proactive, issuing multiple advisories to ensure public safety and is on high alert to mitigate the effects of these natural calamities. Residents and visitors are strongly urged to avoid river sites, stream sites and flood-prone areas, especially in the Kargil region, due to the expectation of rainfall in the coming days. MP Ladakh has emphasized the critical importance of avoiding these dangerous areas to prevent accidents and enable emergency services to operate more effectively. In a recent statement on his X account, MP Ladakh called upon all disaster action teams, including Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil administration and police, to remain vigilant and fully prepared for any potential emergencies. The dedication and prompt response of these teams are essential in managing and mitigating the impact of unforeseen situation. Meanwhile, Ladakh Meteorology Department has forecasted for generally cloudy day at most places of Kargil today, with 60-70% chance of rainfall by late evening. For Parikrama, this is Anad Ali from Kargil, UT Ladakh.
लद्दाख के बाद अब आपको ले चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आदि पिरुकू मनाकर शुभ आदि तमिल माह को मनाया जाता है। ये रिवाज कावेरी नदी को धन्यवाद देने के लिए वर्षों से मनाया जा रहा है। सुनिए हमारे संवाददाता से एक रिपोर्ट।
एंड नाउ मूविंग ऑन, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्वच्छदानम पचदानम क्लेनलीनेस एंड ग्रीनरी कैंपेन अक्रॉस द स्टेट टुडे। द प्रोग्राम इज एम्ड एट इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रे डॉग मेनेस बिसाइड्स इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर अक्रॉस द स्टेट। A report from our correspondent.
The state government under the aegis of State Panchayat Raj and Rural Development Ministry has taken up the Swachhadanam Pachadanam, means cleanliness and greenery campaign today across Telangana. The clean and green drive has been taken up every village and will continue for 5 days in the first phase. State Panchayat Raj Minister Anasuya Sitakka has formally launched the program at Abbapuram village in Mulugu assembly segment. Public representatives and senior officials are taking part in the programs being held across the state. As part of the drive, measures will be initiated to increase cleanliness and greenery in villages and towns to contain contagious diseases, and awareness campaigns will be held on mosquito menace, pest control and injection pit management. And the first day of the campaign today has been dedicated to carry out awareness programs on plantation and sanitation with the effective participation of elected representatives, women self-help groups and youth. Various competitions like essay writing and elocution competitions are also being conducted to encourage children and make them part of the campaign. Tomorrow, sanitation drive at drinking water sources, awareness campaigns on need for chlorinization of drinking water, identifying houses where injection pits can be set up and identifying encroachments of water bodies and the need for revival of encroached water bodies. One day will be focused on conducting desilt drainage, diverts stagnated water into drainages, sanitation works in low-lying areas and filling potholes on roads. The remaining days will be focusing on creating awareness and take measures to contain vector-borne diseases with the participation of health workers, fever surveys and initiation of special measures to sensitive areas and enumeration of stray dogs and shifting them to animal birth control centers and observing dry days, identifying buildings and structures in dilapidated condition and measures to remove them. Lakshmi for Parikrama, Hyderabad.
And dear listeners, after updating you with the news, now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Azadi ka Amrit Mahotsav.
Azadi ka Safar with AIR News. Birth of a nation. India's glorious freedom struggle is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed.
We remember the freedom fighter Gopinath Bordoloi, who died on the 5th of August 1950.
Born on 6th June 1890 at Raha, Assam, Bordoloi was a lawyer by profession. He actively participated in the non-cooperation movement and was jailed in 1922. Bordoloi was elected leader of the opposition in the Assam Legislative Assembly in 1936. 2 years later, in 1938, he became the Premier of Assam. However, after the outbreak of World War II, he and his cabinet resigned in 1939. After resigning from the post of Chief Minister of Assam, Bordoloi was jailed twice. After his release in 1944, he was once again elected as the Premier of Assam in 1946.
Bordoloi served as a member of the Constituent Assembly from Assam. Bordoloi became the first Chief Minister of Assam in independent India. He implemented progressive industrial and educational policies and was also responsible for establishing a number of universities, including the Guwahati University. Bordoloi was conferred the title Lok Priya, meaning loved by all.
The great nationalist Gopinath Bordoloi passed away on August 5, 1950, while still in office. He was posthumously awarded the Bharat Ratna in 1999 for his work in public affairs. In 2002, a statue of Bordoloi was unveiled in Parliament. AIR News salutes the great Indian.
We also remember nationalist Neelakant Das, who was born on the 5th of August, 1884 at Sri Ramachandrapur village in the district of Puri, Odisha. Along with Utkalmani Gopabandhu Das, Acharya Harihar Das, Pandit Godavarisha Mishra and Pandit Kripa Sindhu Mishra, Neelkanth Das is one of the Panchasakha of Satyavadi era, who resolved to bring renaissance in the field of education and culture in Odisha and ensure its prosperity.
Neelkanth rejected an offer of a lucrative job by the British government and preferred to serve as the headmaster of Satyavadi High School. Later, he worked as a professor in Odia and philosophy, but relinquished his service in order to join the non-cooperation movement. He was elected as a working member of the Utkal Pradesh Congress Committee and also member of the All India Congress Committee. He edited a newspaper titled Seba from Sambalpur. He was arrested in 1922 for his participation in the freedom struggle and imprisoned in Hazaribagh jail for 6 months.
In 1923, Neelakantha was elected as a member of the Central Assembly. He participated in the Shimla Conference in 1926. In 1928, after the death of Pandit Gopabandhu, he took up the leadership of Congress in Odisha. During the civil disobedience movement, he participated in Salt Satyagraha, for which he was imprisoned for 6 months. Again, he started the movement for the upliftment of the depressed classes and edited a monthly Oriya journal titled Navabharat.
Neelkanth Das wrote an excellent commentary on Gita, and his epics are considered as masterpieces of Oriya language. He helped establish the Utkal University.
After independence, Neelakantha was elected to Orissa Legislative Assembly in 1951 and 1957. One of the architects of modern Odisha, Neelakantha Das breathed his last on the 6th of November 1967. We salute the great patriot.
We also remember Martyr Hargobind Lalji, a resident of Mumbai who took part in the Tilak Day celebrations during the civil disobedience movement at Bori Bandar, Mumbai. He was badly wounded in a police lathi charge on the procession and died on the 5th of August 1930. AIR News salutes the brave son of the soil.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar with AIR News. See you in the next episode tomorrow.
And in business news today, Indian benchmark indices shed more than 2.5% on August 5 with Nifty at 24,050. At close, the Sensex was down 2,222 points or 2.7% at 78,759, and the Nifty was down 662 points or 2.6% at 24,055. About 471 shares advanced, 3,082 shares declined, and 88 shares unchanged. All the sectoral indices ended in the red, with auto, metal, capital goods, media, realty down 4% each. BSE mid-cap index shed 3.5% and small-cap index fell 4%. In the global crude market, Brent crude is trading at $75.38 per barrel. WTI crude is trading at $72.14 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold is trading at 69,730 rupees for 10 grams. Silver, 999 fine, is trading at 81,240 per 1 kilogram. And now let's move on to the segment of births and deaths, where we remember our famous personalities whose birthday either it falls today or whose it is birth anniversary or death anniversary. So, Prachi Priya, shuru karte hain?
Bilkul, bilkul. Pahunchayenge hum aap logo ko un sabhi tak, jinka aaj janmdin, jayanti ya phir aaj ke din unhone humse keh diya alvida.
Today is the death anniversary of Sir Alec Guinness, an English actor. He collaborated 6 times with director David Lane as Herbert Pocket in Great Expectations, Fagin in Oliver Twist, Colonel Nicholson in The Bridge on the River Kwai, for which he won both the Academy Award for Best Actor and the BAFTA Award for Best Actor. We're listening to a song from one of his movies, Barnacle Bill.
आज हिंदी साहित्य की जीवंत कवि शिव मंगल सिंह सुमन की भी जयंती है. सुमन प्रगतिशाली प्रगतिशील कवि थे. वे विचार से वामपंथी जरूर थे, लेकिन किसी विशेषवाद को गठरी की तरह नहीं बनने दिया, उसे धोया नहीं, बल्कि अपनी जनवादी, जनकल्याण, प्रेम, मानव जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह सृजन से वाद को खंगालते रहे. इसलिए वे जनकवि हुए. आइए जरा सुने उनके द्वारा पढ़ी गई उनकी कविता वरदान मांगूंगा नहीं.
वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं. मृत सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं. क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं. लघुताने अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो, लघुताने अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं. चाहे हृदय को ताक दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं.
Also, dear listeners, it's interesting to note that today is the birth anniversary of Neil Alden Armstrong, an American astronaut and aeronautical engineer who in 1969 became the first person to walk on the moon. He was also a naval aviator, test pilot and university professor. And we all remember him with his famous words, "That's one small step for a man and one giant leap for a mankind." And now moving on, also we are celebrating the birthday of Ram Gyan Rikki Kach, an Indian-American music composer and environmentalist of Indian descent and a 3-time Grammy Award winner. In 2015, Rikki Kach won a Grammy at the 57th Annual Grammy Awards for his album Winds of Samsara. So let's listen to a track from his album Samsara. One heart.
और अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का, तो दीजिए अनुमति प्राची प्रिया और शेफाली सिंह को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। इस कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारा कार्यक्रम आप 24 घंटे सुन सकते हैं।
नमस्कार।